मेरे प्यारे साथियों नमस्कार फ्रेंड्स, मुख्य विषय के तहत हम लोग कल के ही अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे। कल मैंने अपनी बात यहां समाप्त की थी कि जो कट ऑफ मार्क्स होते हैं उनमें कितना अधिक फ्लक्चुएशन होता है और सामान्यतया जब जिस दिन एग्ज़ाम होते हैं उसी दिन किस तरह की बातें कही जाती हैं और उसका आप यूं कह लीजिए एक प्रकार से हम फैक्ट चेक कर रहे थे। मेरी समझ से कुछ बातें तो आपको स्पष्ट हो गई होंगी। अब आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है? देखिए, ये तो सच है कि कट ऑफ मार्क्स 116 भी रहे हैं जो अभी तक हमारे सामने कुछ पिछले सालों के अगर हम देखें तो हम उपस्थित हैं, और जो मिनिमम रहा है वो 92.5 रहा है स्कोर। अब सवाल यह है कि आप अगर 2022 के लिए प्लान करते हैं तो आपका प्लान क्या होना चाहिए, राइट? क्या आप सच में इनको आधार बना करके कोई प्लान कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई रास्ता इन आंकड़ों से निकल रहा है, या ये आंकड़े इशारे के तौर पर आपको कुछ बता रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? डेफिनेटली कर रहे हैं। आंकड़ों का महत्व ही इसलिए होता है कि आप अपनी एक स्ट्रेटजी तैयार कर सकें, रणनीति तैयार कर सकें। देखिए, इस बात को आप कतई मत भूलिए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो बेसिकली एक किस्म का युद्ध है, या यूं कह लीजिए कि मैच है। मैच का दारोमदार होता इस बात पर है कि आप सामने वाले से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। जब हम सब कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं तो दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करने की चुनौती हमारे सामने नहीं होती है। हमारे इतने मार्क्स आ जाए, एबव 35% आ जाए, कहीं कहीं वो 33% है, तो हम अगले क्लास में पहुंच जाएंगे, अपग्रेड हो जाएंगे हम। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। हो सकता है कि मेरे 35% मार्क्स आए और मैं सेलेक्ट हो जाऊं, और नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि मेरे 55% मार्क्स आए और मैं सेलेक्ट ना हूं, क्योंकि दूसरों का प्रदर्शन मेरी तुलना में बेहतर रहा। तो ये तो बहुत ही अनसर्टेनिटी सी स्थिति हो जाती है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? क्योंकि मैच है तो मैच में हमेशा एक रणनीति बनानी होती है। युद्ध है तो युद्ध में एक रणनीति बनाकर के ही हमें काम करना पड़ता है, किया ही जाना चाहिए। इसलिए पहली बात जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आपके मस्तिष्क में आपके अपने पढ़ाई का तौर तरीका, अपना समय, अपने अटेम्प्ट, इन सब के बारे में बहुत स्पष्ट रणनीति होनी चाहिए। मुझे कितना कितना पढ़ना है, किन किन को पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, इसकी रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए। एक दिन में कितने घंटे पढ़ना है और उन घंटों का निर्धारण इस आधार पर होना चाहिए कि कब आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको कितना सारा पढ़ना है, तो एक दिन में कितना कितना पढ़ करके ये जो जितना सारा पढ़ना है इसको आप पूरा कर लेंगे, इसके आधार पर होना चाहिए। तब कहीं जाकर के आपकी रणनीति तैयार हो पाएगी, और आपको स्कोर कितना करना है इसके आधार पर फिर आप इस बात का फैसला करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, और उसके लिए डेफिनेटली डेटा आपकी मदद करते हैं। तो देखिए, जब हम प्री एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो डेटा चाहे जो भी कह रहे हों, जैसे अगर हम सिर्फ पिछले साल के डेटा को आधार बना लें तो 46. चलिए हम 5% मार्क्स की बात कर रहे हैं कि स्कोर होना चाहिए, लेकिन आपका जो टारगेट होना चाहिए वो यही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही रिस्क ओरिएंटेड डेटा है, ये बहुत ही रिस्की डेटा है। हालांकि देखिए, कहा यही जा रहा है कि इस बार भी कट ऑफ मार्क्स इसके आसपास होंगे। मैं उनसे बहुत अलग जाकर के कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहा हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आप इसे अपना टारगेट मत बनाइए, इस टारगेट में थोड़ा सा इजाफा कीजिए। उसके पीछे कारण है, हमारे पास ये जो डेटा है, इनफैक्ट ये कोरोना के पीरियड का डेटा है, राइट? अब आप देखिए कि जो आपका जो अगला एग्जाम जो होना है वो जून में होना है, और कोरोना की स्थिति लगभग लगभग आपके प्री एग्जामिनेशन से, यानी कि नेक्स्ट ईयर जो प्री एग्जाम होगा उससे लगभग लगभग 8 महीने पहले स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो गई हैं, और 6 महीने पहले से तो आप यूं कह लीजिए कि संस्थान भी ओपन हो गए हैं, कहीं कहीं कोचिंग शुरू हो गई है, और चलिए कहीं कहीं शुरू हुई है, लेकिन फुल फ्लेज्ड से जैसे ही आप नए साल में एंटर करेंगे कोचिंग क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी, माहौल बदल जाएगा, आप एक दूसरे से मिलेंगे, टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, इसका डेफिनेटली आपके स्तर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं ये मान करके चलता हूं कि ये जो 92.5% का कट ऑफ मार्क्स है, इसमें बढ़ोतरी होनी ही चाहिए। अब सवाल यह है कि बढ़ोतरी कितनी हो। हमारे पास अगर हम इस 92.5 को छोड़ दें तो फिर जो न्यूनतम डेटा मिलता है वो 98 का है। 2018 का जो कट ऑफ मार्क्स है वो 98 का है, उस समय कोरोना नहीं था, यानी कि 49%। इसमें भी थोड़ा इजाफा करना चाहिए क्योंकि 105 भी है, 107 भी है और 116 भी है। 116 को चलिए हम थोड़े समय के लिए अपवाद मान लेते हैं कि किसी वजह से बहुत हाई स्कोर हो गया। हो सकता है कि लोगों को पेपर थोड़ा सा सरल लग गया हो या जो भी है, तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी हालत में आपको अपना जो टारगेट है एबव 50% रखना चाहिए। दोस्तों ये मेरा कंक्लूजन है, 50% से अधिक का स्कोर। और याद रखिए कि जब 50% से अधिक का स्कोर कह रहा हूं तो उसका मतलब है कि जो माइनस मार्किंग होती है उसको घटाने के बाद तो आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपके बिल्कुल स्ट्रेटजी का पार्ट होना चाहिए कि मुझे इतने क्वेश्चंस तो बिल्कुल सही सही हल करने ही हैं, फिर इतने क्वेश्चंस मैं दो ऑप्शंस में जहां मुझे कंफ्यूजन हो रहा है उतने में सॉल्व करूंगा, दो ऑप्शन वाले तो आप सारे के सारे सॉल्व कर ही लीजिए। कुल मिलाकर के है कि किसी भी हालत में मुझे एबव 50% स्कोर करना ही करना है। और जिस दिन आपको लगे कि आपकी तैयारी 50% के लायक हो गई है, अपने टारगेट को फिर थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। बेहतर होगा कि उसे आप थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते। हाँ, अगर आप 55% पर पहुंच जाते हैं तो मैं ये मान करके चलता हूं कि आप लगभग सेफेस्ट कहना चाहिए कि सेफेस्ट जोन में आ गए हैं। 50% स्कोर सेफ जोन, 52% स्कोर, 53% स्कोर सेफर जोन, और अगर आप 55% लाते हैं तो सेफेस्ट जोन आप मान सकते हैं। फिर तो देखिए काफी कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया है। जब आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता किस तरीके की है, किस तरह का साइकोलॉजी आप महसूस कर रहे हैं, कितना अंदर आपके कॉन्फिडेंस है, फिर कहीं कहीं थोड़ा बहुत लक फैक्टर माइनस मार्किंग के तहत काम कर जाता है। क्योंकि देखिए लक ने काम किया और सही निशान लग गए तो उस पर आपको 100% मार्क्स मिल गए, और अगर लक ने फेवर नहीं किया और गलत पर निशान लग गए तो जो 100% उस क्वेश्चन के मिलते यानी कि दो नंबर मिलते वो तो खत्म हो ही गए, बल्कि जो पहले के मिले हुए हैं दूसरों में उसमें भी पता लगा कि 0.66 मार्क्स कम हो गए। तो थोड़ा सा फैक्टर काम करता है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब इस बार मैंने मार्कशीट देखी तो लोग बहुत थोड़े थोड़े के लिए चूक गए हैं, बहुत थोड़े थोड़े के लिए। एक स्टूडेंट मुझे मिला, आप कल्पना करके देखिए कि जिसका स्कोर था 46.1 या कुछ इस तरह का स्कोर था, जो बहुत थोड़े से के लिए चूक गया। तो दोस्तों आपका जो टारगेट होना चाहिए उस टारगेट को मैंने आपके सामने स्पष्ट किया है। अब आइए हम इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं। अब आपको अपनी स्ट्रेटजी तैयार करनी होगी और स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए जरूरी है कि मैं आपको अब सब्जेक्ट वाइज आपके सामने कुछ डेटा रखूं कि किन किन सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं इसका संबंध 2021 का अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उस पेपर से है। अब आप केवल डेटा भर सुन लीजिए, हालांकि डेटा आपको मालूम होगा बहुत से मैगजीन्स ने और दूसरे माध्यमों से प्रकाशित भी हुए हैं, लेकिन फिर भी एक डेटा में चूंकि अपनी बात मुझे संपूर्णता के साथ रखनी है तो पेश कर रहा हूं, आप सामान्य तौर पर सुन ले। हिस्ट्री से जो टोटल क्वेश्चन पूछे गए हैं वो 18 है आउट ऑफ 100। देखिए जो डेटा है ये थोड़े से डिफर कर जाते हैं ना, कि पता लगा कि किसी को आपने करंट अफेयर्स से निकालकर सब्जेक्ट में डाल दिया, सब्जेक्ट से निकाल करके करंट अफेयर्स में डाल दिया है, तो इस तरह से कुछ डिफर कर जाते हैं। लेकिन टोटल 100 क्वेश्चंस का लगभग जो विभाजन होना चाहिए इस आपके यूं कह लीजिए कि नीति तैयार करने की दृष्टि से, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। हिस्ट्री से टोटल 18 क्वेश्चंस पूछे गए हैं आउट ऑफ 100, 18 क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा, नहीं तो आप नोट करके रखिए ताकि तभी आप रणनीति तैयार कर सकेंगे। पॉलिटी से जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है 18 क्वेश्चंस, यानी कि हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों से 18 क्वेश्चंस पूछे गए। जो तीसरा स्थान रहा वो इकोनॉमिक्स का रहा, टोटल 15 क्वेश्चन। आप देखिए कि इन तीन से कितने पूछे गए हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट स्थान रहना चाहिए था वो ज्योग्राफी का रहना चाहिए था, वो नहीं रहा। जो नेक्स्ट पोजीशन रही वो रही एनवायरमेंट एंड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी हम खासकर जो एनिमल और प्लांट्स के बारे में जो स्टडीज होती हैं उनको हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी। इस बार इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनवायरमेंट और मॉर्फोलॉजी से, टोटल 16 क्वेश्चंस। मैं दोनों को एक साथ लेकर के इसलिए चल रहा हूं कि देखिए जो प्लांट है, प्लांट भी कहीं ना कहीं एनवायरमेंट से जुड़ा हुआ है और अलग से आप बॉटनी पर कुछ पढ़ते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने इसे एनवायरमेंट में शामिल कर लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 12 क्वेश्चन हैं, मुझे लगता है कि काफी बड़ी संख्या है 12 क्वेश्चंस, क्योंकि जो एनवायरमेंट और खासकर स्पेशली जो मॉर्फोलॉजी से पूछे गए हैं वो भी साइंस के काफी करीब हैं। एनवायरमेंट भी आप जानते हैं कि काफी कुछ साइंस के निकट हो जाता है, प्योर एकदम तो साइंस जैसा कठिन नहीं होता, लेकिन फिर भी अपेक्षाकृत। मॉर्फोलॉजी भी एकदम साइंस जैसा कठिन नहीं होता, उसमें कुछ बहुत ही व्यावहारिक किस्म के प्रश्न होते हैं जो जनजीवन में भी प्रचलित रहते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं जो साइंस प्रजाति के हैं तो 16+12=28 क्वेश्चंस यहां से हैं। ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन पूछे गए, 10 क्वेश्चन ज्योग्राफी से हैं। एग्रीकल्चर से 4 क्वेश्चंस हैं, स्पोर्ट्स से 3 क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज जो इनमें इन खांचों में फिट नहीं बैठते उसको मैंने जनरल नॉलेज में सामान्य तौर पर डाल दिया है, 2 क्वेश्चन है, और आर्ट एंड कल्चर से 2 क्वेश्चन है। देखिए वैसे हम आर्ट एंड कल्चर वाले क्वेश्चंस को बकायदे हिस्ट्री में डाल सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का ही कहीं ना कहीं एक छोटा सा हिस्सा होता है वो आर्ट एंड कल्चर का होता है। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस का एक विभाजन है विषय की दृष्टि से। ये बात मुझे बतानी इसलिए जरूरी थी ताकि आपके दिमाग में ये जो विभाजन है ये अच्छी तरह से बैठ जाए और रणनीति बनाने में आपकी मदद कर सके। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को दोस्तों यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।